ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यदुरोवाच मत्सहेजशास्तातुम् अन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्णं नैति पुरुषः। सहेजरसास्तातुम् अन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पुरुषः। नोत्सहेजरसास्तातुम् अन्तरा प्राप्तया तव अनित्यं सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पुरुषः। सहेजरसास्तातुम् अन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्णं नैति पुरुषः। सहेजरसास्तातुम् अन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ब्राह्मणं वैतृष्णं।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री यदु उवाच। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने उत्तर दिया, न उत्सहे, मैं उत्सुक नहीं हूं, जरसा, आपके बुढ़ापे तथा असक्तता से, स्थातुम, रहने के लिए, अंतरा, जवानी में, प्राप्तया, स्वीकार किया हुआ, तब, आपका, अविदित्वा, बिना अनुभव किए, सुखम, सुख, ग्राम्यम, भौतिक या शारीरिक, वैतृष्ण्यम, भौतिक सुख से विरक्ति, ना, नहीं, एति, प्राप्त करता है, पुरुषः, व्यक्ति। कृपया अनुवाद पीछे दोहराइए। यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे, किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मानी नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का उपभोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, धैर्य देके सुनना पड़ेगा। भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्रदान करना है, जिसे समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग किए बिना प्राप्त करना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग के सारे आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मण्युपशमाश्रमश्रयम्पु, पूर्ण विरक्त हुए बिना ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हुआ जा सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतएव जब तक मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता। अथवा दूसरे शब्दों में भक्ति में संलग्न व्यक्ति पहले से ब्रह्म पद पर रहता है। मां च यो अभ्यविचारे न भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अतएव जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। सामान्यतया जब तक कोई व्यक्ति भौतिक सुख का भोग न कर ले तब तक वह वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वर्णाश्रम क्रमशः उत्थान के लिए अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया कि वह अपनी जवानी त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह इसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। महाराज यदु अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है, तुर्वश्चोदितः पित्रार् द्रुयश्चानुभारत प्रत्यक्षक्षुरधर्मज्ञाः। महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे धर्म से भली भांति अवगत न थे। उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना तो यह सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था, जैसा कि दशम स्कंद में कहा गया है, यदुश्च धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत थे। धर्म का चरम सिद्धांत अपने को भगवान की भक्ति में लगाना है। महाराज यदु स्वयं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक अवरोध था, जवानी में भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा निश्चय ही होती है, और जब तक इन इच्छाओं को जवानी में पूरी तरह तुष्ट नहीं किए कर लिया जाता तब तक भगवान की सेवा करने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हमने वास्तव में देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्व अवस्था में सन्यास ग्रहण कर लेते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट न किए रहने के कारण विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि सन्यास के पूर्व गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में सन्यास ग्रहण करके भगवान की सेवा में पूरी तरह संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता के आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले जवानी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह जवानी उनके पिता लौटा देंगे, लेकिन इस आदान प्रदान से उनकी अनन्य भक्ति में विलंब होता। अतएव वे अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे निर्विघ्न स्वतंत्रता चाहते थे। साथ ही यदुवंशियों में ही भगवान कृष्ण को जन्म लेना था और महाराज यदु उत्सुक थे कि भगवान का प्राकट्य यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र हो, इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह धर्मविहीन नहीं था, क्योंकि यदु का उद्देश्य भगवान की सेवा करना था। चूंकि यदु भगवान के आज्ञाकारी दास थे इसलिए कृष्ण ने उनके वंश में जन्म लिया, जैसा कि कुंती की प्रार्थना से पुष्टि होती है, यदु प्रियस्यान्वयाये। यदु कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, अतएव वे यदु के वंश में अवतार लेने के लिए उत्सुक थे। निष्कर्षतः महाराज यदु को अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में उनके भाइयों के लिए कहा गया है, वे चार सनक कुमारों चतुसन की भांति थे जिन्होंने उत्तम कार्य के लिए अपने पिता ब्रह्मा के आदेशों को ठुकरा दिया था। चूंकि चारों कुमार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतएव उनके द्वारा पिता की आज्ञा को न मानना अधर्म था, अधर्म नहीं था। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भागवत कक्षा में, और मैं सबसे पहले यहाँ बैठे हुए सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ताकि मैं उनके आप सबकी कृपा से इस श्लोक पर प्रभुपाद जी के परपट पर कुछ चर्चा कर सकें। ये प्रसंग जो प्रतिदिन आते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, हमको मालूम है, बट ये प्रसंग चल रहा है कि महाराज पुरुर्वा के वंश चंद्रवंश का एक्चुअल में वर्णन चल रहा है कि चंद्रवंश में पहले सूर्यवंश का वर्णन हो चुका है, तो अभी चंद्रवंश का वर्णन किया जा रहा है कि चंद्रवंश में कौन कौन से और प्रतापी राजा हुए और किस तरह से जो है ये चंद्रवंश आगे बढ़ा है। चंद्रवंश की शुरुआत जैसे कि नाम है चंद्रमा से होती है, बट ये चंद्रवंश की शुरुआत भी बड़ा जैसे सूर्यवंश की शुरुआत है वैसे चंद्रवंश की शुरुआत बिल्कुल अलग सा है, क्योंकि चंद्रवंश के शुरुआत में बहुत युद्ध होता है और तभी ये चंद्रवंश एग्जिस्टेंस में आता है। एक्चुअली चंद्रमा जो कि जिनका एक सोम भी नाम है, वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, ये कथा विष्णु पुराण में आती है। वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद वो बहुत अधिक शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं। एक्चुअल में चंद्रमा जो हैं वो अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे और ये इन्होंने जो है बाद में अपने गुरु बृहस्पति को पत्नी को उठा लिया, जो कि जिनका नाम तारा था, और तारा बहुत सुंदर जो है स्त्री थी, तो उनको उठा के ले गए। बाद में जब उनको वापस लेने के लिए बृहस्पति जाते हैं और बाकी लोग, तो किसी भी तरह से तारा को वापस करने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोग उनकी तरफ से आ जाते हैं और कुछ लोग इनकी तरफ से, जैसे शुक्राचार्य बुद्ध की तरफ सॉरी चंद्रमा की तरफ से आते हैं और ऐसे कुछ कुछ लोग आते हैं, और इस तरफ से भी जो है कई लोग और देवता लोग आ जाते हैं, शिवजी भी आ जाते हैं बृहस्पति की तरफ से। इस तरह से बहुत बड़ा युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बहुत समझाते हैं चंद्रमा को कि आप इनकी पत्नी को वापस कर दो, तो मानते नहीं हैं, और सप्तऋषि भी समझाते हैं, कई लोग समझाते हैं, फिर फाइनली भगवान को आना पड़ता है और भगवान प्रकट होते हैं और भगवान फिर जो है झगड़े हैं उसको सुलझाते हैं। तो इस झगड़े को सुलझाने में है कि वो तारा को वो वापस कर देते हैं, लेकिन जब तारा वापस आती है तो वो गर्भवती होती हैं, तो बृहस्पति जो है उसको डांटते हैं कि मैं किसी के और के उसको सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस अपनी जो संतान होने वाली है उसका परित्याग कर दो। तो उसका परित्याग कर देती हैं एक झाड़ी में जा करके, लेकिन वो बालक का तेज इतना अधिक था कि बहुत वो जो इलाका था, वो जो जगह थी, वो सारा दीप्यमान हो जाता है, और जो देवता हैं उनका भी जो प्रकाश है वो फीके पड़ जाते हैं उस बालक के उसमें तेज के सामने। तो बाद में सब ये बृहस्पति उसको अंगीकार करना चाहते हैं और चंद्रमा भी चाहते हैं कि मैं उसको ले लूँ, दोनों चाहते हैं कि ले लूँ। अब फिर एक दोबारा लड़ाई शुरू होती है, ये पुत्र है किसका। तो उस समय फिर ये बहुत लड़ाई जब शुरू होती है, दोबारा ब्रह्मा जी वापस आते हैं और ब्रह्मा जी फिर तारा से पूछते हैं कि बताओ कौन कौन है इसका पिता। अब तारा कुछ बोलती नहीं है कौन इसका पिता है, तो बहुत देर तक ये तारा बता नहीं रही होती है बिल्कुल भी। तो जो बालक है उसको बहुत क्रोध आता है, वो अपनी माँ को कहता है कि तू बताती है कि मैं किसका बेटा हूं या मैं तुझे श्राप दूं। तो वो फिर जो ब्रह्मा जी हैं वो एकदम से रोकते हैं उस बालक को, कह रहे हैं कि अभी रुको, अब इसको श्राप मत दो, मैं पूछ लेता हूं। तो फिर तारा जो है फाइनली बताती है कि ये चंद्रमा का पुत्र है, श्री श्री राधा राधिकारमन भगवान की जय। तो तारा बताती है कि ये चंद्रमा का पुत्र है, तो चंद्रमा उसको अपने पास लेके जाते हैं और उसका नाम रखते हैं बुध, जो कि प्लैनेटरी सिस्टम एक ग्रह है। तो ये बुध जो है इन्हीं बुध के की पत्नी होती है इला, जिसके पुत्र हैं महाराज पुरुरवा। और तो ये चंद्रवंश वहां से ये बुद्ध के उसमें से शुरू होता है। और पुरुरवा के पुत्र थे आयु, आयु के पुत्र थे महाराज नहुष, नहुष के पुत्र थे ययाति, ययाति के पांच पुत्र थे, जिसमें से पुरु, तुर्वशु, द्रुहियु, अनु और यदु, सॉरी पुरु। ये पांच पुत्र थे महाराज ययाति के। और हम पीछे की कथा चल रही है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे अभी मैंने बताया भी आपको कि इस पुत्र के लिए वंश को शुरू होने से पहले लड़ाई हुई, शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में भी हम लड़ाई देखते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमें गलती कभी नहीं करना चाहिए। ये देखने में जरूर साधारण लगता है कि लड़ाई भी ऐसी लगती है कि ऐसी होगी। आप सोचिए जिसकी लड़ाई के बीच को खत्म करने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति तो साधारण नहीं होगा। या आपकी लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई आया हो, प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ भी, तो ऐसा तो नहीं है ना, कभी ऐसा हुआ हो कहीं कि पता चले आप भी वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं है और ना इनके झगड़े को हमें साधारण रूप में लेना चाहिए कभी भी। श्रीमद् भागवतम में का जो एक एक कैरेक्टर, एक एक चरित्र अपने आप में शिक्षा देने के लिए है हम सब के लिए, तो वो उसको एक सामान्य उस, क्योंकि हम हर, क्योंकि हम लोग भौतिक चेतना में रहते हैं इसलिए हम हर चीज को भौतिक बना देते हैं। चाहे कितनी भी स्पिरिचुअल चीज हो, कैसी भी हो, हम हर चीज को उसको भौतिक चीजों से रिलेट कर देते हैं। इसलिए इसको कृपा करके ऐसा मत सोचिएगा कि ये साधारण लड़ाई थी और इस तरह, क्योंकि इन्हीं देवयानी के पुत्र थे महाराज यदु, जिनके वंश में भगवान प्रकट हुए। देवयानी के दो पुत्र थे यदु और तुर्वशु, और शर्मिष्ठा के तीन पुत्र थे जो कि द्रुहियु, अनु और पुरु। तो दोनों तीन पुत्र, तो बाद में महाराज पुरुरवा का वंश अलग चलता है और यदु का वंश अलग चलता है, तो ये बिल्कुल अलग अलग। तो ये जो यहाँ पर जो प्रसंग है उसमें महाराज ययाति ने अपने पुत्र से यौवन मांगा, जो कि हम पीछे हम कथा सुनते आए हैं। तो यौवन में उन्होंने जो है सबसे बड़े पुत्र होने के कारण सबसे पहले उन्होंने यदु से ही मांगा कि आप अपनी जवानी मुझे दे दो। हालांकि इतिहास में ये घटना भी बड़े आश्चर्य की है कि ऐसा निर्लज्जता और ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है कि कोई अपने पिता अपने पुत्र से कहता है कि अपनी जवानी दे दो, मेरी बुढ़ापा ले लो, है ना। और इस तरह का कभी, और सिर्फ इसलिए कि क्या कह रहे हैं कि मैं अभी तक जो है संतुष्ट नहीं हुआ हूँ अपने भोग जीवन से, तो इसलिए वो जवानी मांगना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, बड़ी विचित्र बात यह है कि उस समय के जो लोग थे या उस समय के जो पुत्र होते थे या पिता या जो भी कोई, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था, तो महाराज यदु ने फ्लैटली मना कर दिया एकदम, मैं नहीं देना चाहता। और प्रभुपाद इस पूरे परपट में जो है दो तीन चीजों को उठा रहे हैं, जिसमें से एक ये बात भी साबित करना चाहते हैं कि महाराज यदु गलत नहीं थे। समझोगे इसमें, हालांकि प्रभुपाद इस महाराज जो यदु जो बात कह रहे हैं कि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, तो ऐसे लगता है जैसे हमें ये एक तरह से देखने में ऐसे लगता है कि लाइसेंस है कि भैया भौतिक सुख तो जरूरी है और उसके बाद में फिर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेंगे, है ना। कई बार हमें गलतफहमी भी हो सकती है, खास करके जो ब्रह्मचारी लाइफ में है उसको, कि इसमें लिखा हुआ है भागवतम में, पर इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है इसका। तभी प्रभुपाद ये आगे बता भी रहे हैं इसको, बहुत डिटेल में इसको बता रहे हैं कि ये सच है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे एक महाराज यहाँ पर आए थे बहुत समय पहले की बात है, अभी वो इस्कॉन में नहीं है, तो वीआईपी रूम में बैठे हुए थे, किसी ने प्रश्न पूछा महाराज इसी तरह का था कि हम लोग जैसे मतलब कोई इच्छा बहुत तीव्र है और उसको पूरा नहीं करते और इसमें आ जाते हैं, तो उन्होंने, महाराज ने उत्तर दिया था, मुझे आज तक वो याद है, उन्होंने कहा था कि कुछ हद तक भौतिक दृष्टिकोण से संतुष्ट हुए बिना कोई व्यक्ति भक्ति में आगे एडवांसमेंट नहीं कर पाएगा और टिकेगा नहीं, वो बाद में कुछ गलतियां करेगा, कुछ ब्लंडर करेगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए कुछ हद तक उसको भौतिक जीवन से संतुष्टि रखनी पड़ती है या होनी चाहिए, या उसका भौतिक जीवन इस तरह से संतुष्ट होना चाहिए ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। और ऐसा प्रभुपाद भी ऐसी यही बात लिखते हैं, प्रभुपाद एग्जाम्पल भी देते हैं कि मैंने भी कई लोगों को ऐसे देखा है कि जो उस रूप में नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप में बाद में जाकर के वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये एक एक तरह से आप समझ लीजिए एक इस आज के भौतिक जीवन का एक फैक्ट है कि इस व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कोई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जैसे एक बार कृष्णा कॉन्शियस के लिए एक महाराज लेक्चर दे रहे थे तो उनको पूछा कि इस्कॉन में कौन लोग आते हैं, जैसे चतुर्विधा भजन्ते माँ चार तरह के लोग आते हैं, तो उनसे पूछा महाराज इस्कॉन में कौन लोग आते हैं, इन चारों में से कोई किस तरह के लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा अर्थ 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 और अर्थ, इसके अलावा और कोई नहीं आता इस्कॉन में। तो पूछा कैसे, जैसे भक्त लोग थे कि भाई सब तो इस तरह से नहीं आते। तो उन्होंने उसकी व्याख्या करी कि देखो अर्थ का ये मतलब नहीं कि कोई पैसे के लिए दुखी हो रहा है, कोई सामाजिक जीवन से दुखी है, कोई पारिवारिक जीवन से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, मतलब कह रहे उन्होंने उनका कहने का मतलब था कि किसी न किसी रूप से वो परेशान रहता है, दुख है दुख दुख ही रहता है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि 99% जो है इस कौन में इसी तरह के भक्त आते हैं। तो कहने का मतलब इतना कि जैसे यहाँ भी है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे हम मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति है, या हम देखते भी हैं कई बार कि वो व्यक्ति प्रीचिंग होती है उसको, प्रीचिंग करने के बाद वो व्यक्ति आश्रम में आ जाता है या कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेता है कृष्णा कॉन्शियस को, या मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में है तो बहुत गंभीरता से इसको लेता है और फिर फटाफट ऊपर भी भरना शुरू हो जाता है, और थोड़े समय के बाद देखते हैं वो बड़ी सी बड़ी एक बाधा आ जाती है। तो कहने का उसमें मतलब ये है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहता है किसी न किसी रूप में। जब व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा था, अच्छा व्यापार नहीं था, घर में अच्छी स्थिति नहीं थी, या कोई ऐसी तीर चीज़ें थी, और वो व्यक्ति एकदम से आ जाए यहाँ पर और पूरी तरह से भक्ति को अपना ले और एकदम से आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होकर आया है। तो ऐसे भक्तों के लिए ये चांस होता है, ऐसा कि ये कई रूल है पर ऐसे चांसेज ऐसे होते हैं कि ऐसे भक्त जो हैं बाद में वो अलग हो जाते हैं कृष्णा कॉन्शियस से। एक जो प्रमुख बात प्रभुपाद इसमें बता रहे, जैसे कि यदु महाराज बता रहे हैं कि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात भगवान कृष्ण उद्धव को 11वें स्कंद में जब वो वर्णाश्रम की शिक्षा देते हैं उस समय बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम की विधि है ये क्रमिक विकास के लिए है और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। भगवान कह रहे हैं उद्धव को ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसीलिए जो व्यक्ति धीरे धीरे भक्त मुझको प्राप्त करना चाहता है उसको ये चाहिए किसी वर्णाश्रम को एक्सेप्ट करे और इसमें धीरे धीरे अपने आप को इस योग्य बनाए को मुझ तक पहुँच सके। इवन प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह अपने परपट में, मुझे वो ध्यान तो नहीं है, परपट लिखते हैं वो लाइन याद है, प्रभुपाद लिखते हैं वन कैन नॉट बिकम ए प्योर डिवोटी अब्रप्टली, कि कोई व्यक्ति अचानक से शुद्ध भक्त नहीं बन जाएगा। तो शुद्ध भक्त बनने का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और उस प्रोसेस के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध भक्त बनेगा और हमें उसी तरह से उस रास्ते को ले जाना चाहिए। तो उसमें एक इसमें महाप्रभु का वो दे रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो भगवत धाम जाना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए। तो निष्किंचन का क्या मतलब है, तो निष्किंचन का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने आप को प्रोप्राइटर नहीं समझता, पहला, कंट्रोलर नहीं समझता और एंजॉयर नहीं समझता। ये भाव और ये ज्ञान जब तक व्यक्ति डेवलप नहीं करेगा, तो जब तक ये तीनों चीज़ों को नहीं समझेगा उसके अंदर निष्किंचनत्व कम की भावना नहीं आएगी। निष्किंचनत्व का मतलब है मैं कुछ नहीं हूँ, तुच्छ, मेरा कुछ नहीं, अधिकार नहीं है, कोई भी चीज़ मेरा नहीं है। तो इस तरह का भाव जब तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति इन तीनों ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात नहीं करेगा कि मैं किसी भी चीज़ का प्रोप्राइटर नहीं हूँ, अर्थात कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, और मैं किसी भी चीज़ का या किसी परिस्थिति का कंट्रोलर नहीं हूँ, ये दूसरा, और तीसरा कि मैं एंजॉयर भी नहीं हूं। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज जब जिसके अंदर में होगा तो धीरे धीरे वो व्यक्ति निष्किंचनत्व अर्थात निष्किंचन बन सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि निष्किंचनत्व। हम बोल तो बोलेंगे तो सही, हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, लेकिन एक्चुअल में हम होते नहीं हैं, हम थोड़े से चीजों पर हमारा अहंकार जो है वो हो सकता है हम कुछ चीजों के लिए अहंकार ना दिखाएं बट दूसरी चीज के लिए दिखा देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कहना कि जब तक इस चीज को जब कल्टीवेट नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति निष्किंचनत्व नहीं हो सकता। और प्रभुपाद इसमें ये लिख रहे हैं कि माच यो व्यभिचारे न भक्ति योग, जो 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि जो व्यक्ति जब तक व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं करता तब तक वो व्यक्ति उस व्यक्ति की भक्ति शुरू नहीं होती है। अरे बात जो है 14वें अध्याय के अलावा भगवान कहाँ पे कह रहे हैं, 18वें अध्याय में भी कह रहे हैं। 18वें अध्याय में भगवान एक जगह बताते हैं ये जो श्लोक है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, कि जब तक ब्रह्म भूत अवस्था को व्यक्ति प्राप्त नहीं हो जाता वो भक्ति को प्राप्त नहीं होगा। या प्रभुपाद इसको दूसरी उसमें लिखना है कि अगर कोई पूरी तरह से भक्ति में संलग्न है और उसने गंभीरता से इस भक्ति को लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में है। ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब क्या है वो भगवान उस वाले में बताते हैं कि जो बहुत कुछ मिलने से प्रसन्न नहीं होता, जो किसी चीज को खो जाने से दुखी नहीं था, हर व्यक्ति के लिए समान व्यवहार करता है ना, तो ये इस तरह का भाव जिसके अंदर है, न सोचती न कांक्षती, न किसी चीज के लिए लैमेंट मतलब अफसोस करता है और न किसी चीज की इच्छा करता है, हैंकर करता है कि मुझे ये चीज जरूर मिलना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति का अधिकारी होता है कि वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात प्रभुपाद यहां भी, ये जो अविचारी अव्यभिचारी व्यक्ति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी और तरफ या किसी और चीज की या किसी और देवी देवता की किसी भी तरह से उपासना पर बल न देके केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता, एक दूसरा किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति को इंटैक्ट रखता है कि वो अपनी भक्ति में विचलित नहीं होता अपनी भक्ति से। तो ये दूसरी बात है जिससे उसको बताया गया है। फिर ये सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें ये श्लोक में है कि जिसमें महाराज यदु ने जो है मना कर दिया कि मैं जो है आपको अपनी जवानी नहीं दूंगा, तो प्रभुपाद इसके लिए कई सारी चीजें बताते हैं कि यदु क्यों नहीं देना चाहते थे, है ना। तो एक तो पहला कारण यह था कि यदु को स्वयं ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था, जो कि बाद में यदु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और यदु के 4 पुत्र हुए, और यदु के 4 पुत्र में जो सहस्रजीत और कोष्ठा थे, तो सहस्रजीत को उन्होंने सिंधु नदी के उस तरफ का राज्य दिया और कोष्ठा को सिंधु नदी के इस तरफ का राज्य दिया, और इसी कोष्ठा के जो आगे संतान हुए जो कि थे अंधक सात्वत वृष्णी जो है इनके पौत्र थे, ये सब जो लोग हुए बाद में इनके अलग अलग वंश चले, ये जो है आभीर जो अभी का अहीर है, जो आप अहीर समझते हो ये आभीर था पहले, तो ये सब लोग जो हुए बाद में इन्हीं के वंश में जो है भगवान उत्पन्न हुए। और एक्चुअल में महाराज यदु बहुत बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको मालूम था कि भगवान मेरे वंश में आने वाले हैं, एक जो सबसे बड़ा रीजन यही था, और उनको भगवान की सेवा करनी थी कि जब उनका वंश आगे बढ़ेगा तभी भगवान उस वंश में आगे चल के प्रकट होंगे। तो भगवान यदु महाराज जो हैं वो इसीलिए उनको जवानी देने से मना कर देते हैं कि मैं ये चीज अभी नहीं करना चाहती। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदु को विश्वास था कि जो महाराज यजाति हैं कुछ समय के बाद मुझे जवानी वापस कर देंगे, लेकिन उनको लगा कि यह तो बहुत लंबा समय होगा जब वो मुझे जवानी देंगे और उसके बाद मैं फिर दूसरे जीवन में जाऊंगा और फिर इस तरह से आगे चलेगा, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए मना किया। एक था कि उन्होंने उच्च धर्म का पालन करने के लिए जो है ये मना किया, क्योंकि जब भी कभी ऐसा टकराव होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि उच्च सिद्धांत जो है वो का पालन करने के लिए व्यक्ति छोटे जो निम्न सिद्धांत है उसको छोड़ सकता है, जैसे भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि धर्म का अगर आप परित्याग करोगे तो उसका पाप लगेगा, चाहे आप कैसा भी धर्म है, परंतु भगवान फिर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मुझे इन चीजों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना उच्चतर धर्म है। तो अगर दूसरे धर्म को छोड़ के अगर कोई इस धर्म को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो पाप था या रिएक्शन थे उसको भगवान खत्म कर देंगे। तो यह है कि उच्चतम सिद्धांत का पालन करना ज्यादा जरूरी है निम्न सिद्धांत से। जैसे हम एक लौकिक एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए कोई बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई आप 15 दिन मत नहाना, है ना, मान लीजिए अब मुझे बोला 15 दिन मत नहाना, तो इसका मतलब मैं माला ना करूं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो टॉयलेट जाएगा और कहा कि नहाना नहीं है। लेकिन ये उच्चतम धर्म है कि जप करना ज्यादा उच्चतम धर्म है, तो जो बेस्ट हो पॉसिबल वे हो सकता है शुद्धिकरण का वो करके आप उसको करिए। तो ये उच्चतम धर्म का पालन करना ज्यादा आवश्यक है। तो ये महाराज यदु के लिए कि भगवान की सेवा करना, हालांकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पिता की आज्ञा को न माना अधर्म है, इसमें बता रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि कोई पिता की अगर आज्ञा नहीं मानता हो तो अधर्म है वो, कि माता पिता की आज्ञा। भगवान 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7, 8 जब वो देवकी और वसुदेव को कंस की को मारने के बाद धड़ास बधा रहे हैं, तो उसमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति मतलब उसके लिए मनुष्य के लिए माता पिता की सेवा करना उच्चतम धर्म है, और जो कोई माता पिता की सेवा नहीं करता, आप बड़ा उसमें 4-5 श्लोक हैं आप पढ़ोगे, बड़ा भगवान बड़ा मतलब बहुत कड़वे शब्द बोलते हैं वहां पर कि उसको उसके साथ क्या होता है, किस तरह के नरक में जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि माता पिता की सेवा अपने आप में एक बहुत उच्चतम धर्म है, तो उसकी सेवा और खास करके उन माता पिता की जो कि भगवान के भक्त हैं, है ना। तो यहां क्या है कि जो भगवान इनके यदु महाराज के जो यदु महाराज के पिता यजाति महाराज को जो उन्होंने उनको वचन वो काब जवानी मांगी, तो यदु महाराज ने एकदम से मना कर दिया, कंसीडर भी नहीं किया बिल्कुल भी कि ठीक है मैं बैठता हूं सोचता हूं करो कर, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता, है ना। तो प्रभुपाद यही उस चीज के बता रहे हैं कि ये उनकी तुलना उन्होंने किससे की है, सनत कुमार से। सनत कुमार ने किसकी आज्ञा ठुकराई थी, ब्रह्मा जी की। क्यों ठुकराई थी, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना वो चाहते थे, मैं भगवान को प्राप्त करना तो उच्चतर धर्म था। हालांकि ब्रह्मा कोई साधारण पिता नहीं है, और ब्रह्मा की बात मानना भी अपने आप में उनका शुद्धिकरण होता, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे भी बड़ा उच्चतम सिद्धांत को अपनाया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसीलिए ब्रह्मा जी के वाक्य को भी उन्होंने ठुकरा दिया। अगर उच्चतम सिद्धांत कहीं पर उपस्थित है तो ये चीजें की जा सकती हैं, कहने का मतलब ये है कि, और यही बात प्रभुपाद पूरे उसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसलिए अपनी उसको उन्होंने ठुकरा दिया। दूसरी बात जो एक जगह जो कि लगते हैं, जब तक मनुष्य, प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, शरीर और इंद्रियों की आवश्यकताओं को कि पूरा करने की भौतिक इच्छा से मुक्त नहीं होता, तब तक वह भगवान या उसके दिव्य धाम को नहीं समझ सकता। मतलब शरीर की आवश्यकता को भी क्या बता रहे थे, शरीर की आवश्यकता है या इंद्रियों की आवश्यकता है उसको भी क्या बता रहे हैं, यह भी भौतिक इच्छा है, उसको पूरा करना भी, कह रहे इससे भी मुक्त होना पड़ेगा। जब तक इसको मुक्त नहीं हो होता तब तक वो भगवान और उसके दिव्य धाम को नहीं समझ पड़ता। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 204 के परपट में प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है अगर ये नहीं करता तो वो, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु महाराज यदु ने जो है वो किस तरह से अपने पिता के बातों को जो है वो ठुकरा दिया, लेकिन उनके पास उसके पूरे कारण थे कि वो उच्चतर सिद्धांत थे जिसकी वजह से वो उन्होंने उसको कर पाए। एक जो दूसरी बात मैं इस उससे लग रहा था मुझे पढ़ के कि एक व्यक्ति जो महाराज ययाति थे, महाराज ययाति कितने बड़े व्यक्ति थे, वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, चंद्रवंश से आ रहे हैं, बहुत बड़े राजा भी थे, पर उनके अंदर भी भौतिक जो लिप्सा है मतलब जो काम वासना की जो लिप्सा है वो हर अत्यधिक मात्रा में थी, और उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे जिस निर्लज्जता से उन्होंने अपने पुत्रों से बोला और अपने ससुर को भी कहा कि अभी अभी मैं आपकी आपकी बेटी और जो है तृप्त नहीं हुई है, इस तरह से बात करना। तो एक श्लोक है जो कि गरुड़ पुराण का यह श्लोक है, उसमें ये बताया गया है कि अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधु कामातुराणाम न भयम न लज्जा चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा क्षुदातुराणाम न बलो न तेजा। ये 115वें अध्याय का 67 नंबर वर्स है कि अर्थातुर व्यक्ति जो होता है, जिसको केवल पैसे की पैसा ही चाहता है, जो व्यक्ति केवल पैसा ही कमाना चाहता है, पैसे में रखना चाहता है अपने लिए, उसके लिए न कोई अपना है न कोई बंधु है, उसका उसका सब कुछ क्या है, पैसा ही उसका बंधु है, पैसा ही सब कुछ का मित्र है, और वो समझता है कि पैसे के बिना मेरा कुछ काम होगा नहीं, और इस भौतिक जगत में हर सब कुछ पैसे से होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो संसार में कोई भी बंधु नहीं है। तो अगले लाइन में लिख रहे हैं कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो कामातुर व्यक्ति होता है उसको न डर लगता है न शर्म आती है। अब ये वो एग्जाम्पल आप यहां देखो किस तरह से फिट बैठता है कि महाराज ययाति इतने बड़े व्यक्ति होते, इतने वंश वंश के बड़े राजा होते हुए भी जब वो कामातुर व्यक्ति जो है उनको इस तरह की प्रपोज अपने पुत्र के सामने प्रपोजल रखते हुए या अपने ससुर के सामने इस तरह से बात करते हुए भी बिल्कुल हिचके नहीं हो किसी भी तरह से। तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, न उसको भय होता है, बड़ा डेरिंग हो जाता है व्यक्ति, और लज्जा भी नहीं आती, शर्म नहीं आती कि उसको लगता है नहीं ठीक है। तो ये जो स्थिति है हम देखते हैं कि आजकल के युग में हर जगह है, और कलयुग में इस तरह की चीज़ों को लोग प्रमोट भी किया जाता है, सरकार के द्वारा भी और सोसाइटी के द्वारा भी, उसके द्वारा भी, बोलेगा नहीं तो कैसे हो काम चलेगा, बोलना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें। फिर आगे और दो लाइन है जो जिसका खाली इससे संबंध नहीं है, चिंतातुरान व सुखम न निद्रा और क्षुधातुरान हम न बलो न तेज। तो कि चिंता, जो व्यक्ति चिंता करता है, जो चिंतातुर व्यक्ति है उसके अंदर कोई जो है न जो है ना किसी उसको न कोई सुख मिलता है ना उसको नींद आती है, कि विजयपति हमेशा चिंता में रहता है ना। तो चिंतातुर व्यक्ति अगर कहीं भी रहता है तो उसको न सुख मिलता है ना निंद्रा आती है। और कह रहे हैं कि जो क्षुधातुरा नाम न बलो न तेज, जो क्षुधातुर अर्थात जो भूख, हर व्यक्ति जिसमें हमेशा भूख लगा होता है जिस व्यक्ति को, उसके अंदर न बल होता है न कोई तेज होता है। तो संसार में जैसे बताया गया है कि एक जगह को प्रश्न पूछा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो संसार में सबसे बड़ा दुख क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा जो क्या बोलते हैं दरिद्र दरिद्र है, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता है, उसको उससे बड़ा दुख किसी का नहीं है संसार में, है ना, कि उससे बड़ा कोई दुख नहीं है इस संसार में। और सबसे बड़ा सुख क्या है, भक्तों के संग में रहना। हालांकि हम लोग जैसे बताते हैं कि भक्तों से सुख से दूर, भक्तों के संग से हटना जो है एक डिवोटी के लिए है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए बताते हैं एक उसमें कि जो व्यक्ति क्षुधातुर है, जो बहुत व्यक्ति भूखा है हमेशा, उसके लिए उससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि हर समय वो अब भोजन की तलाश करता है, हर समय भोजन के लिए चिंतित रहता है कि मैं क्या खाऊंगा। कह रहा भगवान की सबसे बड़ी जो है वो क्या बोलते हैं अभिशाप समझ लीजिए उसी व्यक्ति के ऊपर है कि उसको इस हमेशा इस चीज़ की चिंता करनी पड़ती है कि मैं खाऊंगा क्या। तो ये एक बहुत बड़ा दुख है संसार में। तो कह रहा ऐसे व्यक्ति का न बल होता है न तेज होता है। इस तरह से इस उसमें तो प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि जो इसमें सबसे अच्छा क्या है कि व्यक्ति को क्रमिक रूप में जो है वो ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थ जीवन, गृहमेधी जीवन नहीं, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ में और गृहमेधी में अंतर है, आप लोग जानते भी हैं। तो गृहस्थ जीवन और उसके बाद फिर वानप्रस्थ और उसके बाद फिर संन्यास जीवन में आकर के अपने आप का शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर इस क्रमशः में अगर कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है बड़े आसानी से जो है भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वो बता रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो लालसा खत्म हो जाती है। हालांकि दूसरा इसका पक्ष ये है, आप कह सकते हो कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो इंद्रिय तृप्ति की कामना कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई वर्णाश्रम को बहुत गंभीरता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक फॉलो करता है तो तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं उसको प्रभुपाद खुद भी लिखते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति इन चीज़ों से विरत हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है, एक व्यक्ति के साथ में मैं देखता था, एक अभी भी मैं वो व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति भी करता था, मतलब खूब भजन गाना, हालांकि वो इस्कॉन से रिलेटेड नहीं है, पर खूब भजन गाना, भगवान का कीर्तन करना, इस तरह से काम करता था, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़े गलत काम भी करता था, और दोनों चीज के लिए वो बड़ा मशहूर था, मतलब बदनाम भी था एक दूसरी चीज के लिए और एक सही चीज के लिए वो जो है वो बड़ा उसको लोग पूछते भी थे। पर देखिए क्रमशः हुआ क्या, प्रैक्टिस करते करते कई सालों के बाद आखिर उसकी उसका जो वो कीर्तन था और भजन था वो जीत गया, वो व्यक्ति शुद्ध हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत शक्ति है कि अगर हम इस प्रोसेस में लगे रहते हैं, जैसा कि हम अपने गुरु के निर्देशन में अगर हम इन सब चीज को प्रोसेस को ठीक से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो है वो भगवान को प्राप्त करने से या भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाता। लेकिन बिना गुरु के बिना कृपा के ये प्रोसेस को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। भगवान 11वें स्कंद में उद्धव को बता रहे हैं कि आचार्यम मां बिजानीयात कि न अब मन्येत कुत्रचित, कि आचार्य अर्थात जो गुरु है उसको मेरा ही स्वरूप समझो, उसकी अवमानना करने का प्रयास मत करो। न अब मन्येत कुत्रचित न मर्त बुद्धया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु, मर्त बुद्धि से अर्थात इस भौतिक जगत की बुद्धि से उस गुरु को समझने का प्रयास मत करो। न मर्त बुद्धया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु, उस गुरु के अंदर में सभी देवताओं का वास है और मेरा ही स्वरूप है वो, इसीलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर हम उस भक्ति को करते हैं, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहें या वानप्रस्थ आश्रम में या ब्रह्मचारी आश्रम में, तो हमारी सिद्धि निश्चित है। और इसलिए महाराज यदु इसी अपने उच्चतम पर्पस के लिए उन्होंने अपने इस पिता की बातों को उन्होंने ठुकरा दिया था। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी?